ٹھیک ہے، کیا یہ ہے؟ کیا یہ والا مین ہے؟ آپ کا شکریہ جناب۔ جی ہاں جناب، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے۔ پیچھے آواز میں تھوڑی سی گونج تھی اور اس لیے۔ صبح خیر دوستو، کیا وہاں پیچھے تک آپ میری آواز صاف سن سکتے ہیں؟ اب گونج ختم ہو گئی ہے، آپ کا شکریہ۔ میں آج صبح یقیناً ایک خوش قسمت شخص ہوں جسے اس پلیٹ فارم پر آنے کا موقع ملا ہے، خاص طور پر ان اعلیٰ گواہیوں کے بعد جو پیش کی گئی ہیں۔ میری کوشش صرف یہ ہے کہ ان کی باتوں میں تھوڑا سا مزید اضافہ کروں، تاکہ جس طرح آج صبح ہم برکتوں سے لطف اندوز ہوئے ہیں، اسی طرح مزید برکت ہمارے حصے میں آئے۔ اب میں نے غور کیا ہے کہ ان میں سے کچھ۔ ٹھیک ہے جناب، کیا اب بہتر ہے؟ یہاں موجود کچھ بھائیوں نے جس انداز سے گفتگو کی ہے، بلکہ تقریباً ہر ایک نے، ٹھیک ہے، یہاں سب کے پاس ایک حقیقی روشن شاندار گواہی تھی۔ میں خداوند کے لیے دی گئی اس عمدہ گواہی کی دل کی گہرائی سے قدر کرتا ہوں۔ اب ہم کلام کی جانب بڑھیں گے، اور میں نے اس ہفتے اپنے دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو کلام سننے کے لیے 2 یا 3 گھنٹے بٹھا کر نہیں رکھوں گا۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، اس لیے میں جو کچھ بھی بولتا ہوں وہ تحریک سے بولتا ہوں۔ اب ایک ایسا شخص جس نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہو، جب اس سے بھی تحریک ملتی ہے تو وہ اپنی تعلیم کی بدولت سمجھا سکتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ ایسے مناسب الفاظ کا انتخاب کرتا ہے جن سے لوگ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ لیکن تعلیم کے بغیر مجھے فطرت کی علامات لے کر اپنی تحریک کے وسیلے اظہار کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی لوگوں کے لیے یہ سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں میں اس کے متعلق بہت پریشان تھا، اور میں نے بائبل میں دیکھا کہ خدا نے بھی اسی طریقے سے کام کیا ہے۔ ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے پر غور کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اس کی تعلیم کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے، اور پھر جب وہ بیابان سے باہر آیا تو اس نے لوگوں سے بات چیت شروع کی جو کہ اس زمانے کی کلیسیا تھی، اور ہم دیکھتے ہیں اس نے اسے کیسے بیان کیا۔ اس نے کہا، اے سانپ کے بچوں، دیکھیں، وہ اسی چیز کا عادی تھا کیونکہ وہ فطرت اور بیابان میں رہتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں، ایسی چیز جو پھسلنے والی اور چکنی اور دھوکہ دینے والی ہوتی ہے۔ اب کوئی اور شخص ہو سکتا ہے کہ اس قابل ہو اور اس کے لیے کوئی مختلف لفظ استعمال کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے دھوکے باز یا کوئی اور لفظ استعمال کرے، لیکن یوحنا نے سانپ لفظ کا استعمال کیا۔ میرے خیال میں ہر کوئی سمجھ گیا ہے کہ اس نے کیا بات کی ہے۔ بس پھر اس نے کہا، تم اپنے دلوں میں یہ مت کہو کہ ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میں تمہیں بتاتا ہوں، خدا ان پتھروں سے اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے۔ دیکھیں، کوئی اور قابل نہیں ہے، خدا ان پتھروں پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے یہ بیان فطرت سے دیا، اور یہ بھی کہا درخت کی جڑ پر کولاڑا رکھا ہوا ہے۔ کوئی اچھا تعلیم یافتہ بھائی اسی تحریک کے ساتھ اس طرح کہہ سکتا ہے، وہ نیست و نابود کر دے گا۔ اس نے کہا درخت کی جڑ پر کولاڑا رکھا ہوا ہے، دیکھیں، بہرحال وہ اسے تباہ کر دے گا۔ بس وہ جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس کے چہرے پر یہی تاثرات تھے کیونکہ اس نے کبھی اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ آئیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ میرے پاس دعا کے لیے درخواستیں آئی ہیں جو کہ میری خدمت ہے، تاکہ بیماروں کے لیے دعا کروں۔ میرے پاس یہاں کچھ درخواستیں ہیں جو بہت ہی نمایاں درخواستیں ہیں، اور مجھے معلوم ہے یہاں بہت سی درخواستیں موجود ہیں، اور اگر آج صبح کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے یاد رکھا جائے، تو آپ اپنے ہاتھوں کو خدا کے لیے بلند کریں، کہیں میں اب اپنی درخواستوں کو تھامے رکھیں جبکہ ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، اب ہم تیرے مقدس بیٹے خداوند یسوع کے نام کے وسیلے تیری پاکیزگی کے قریب آ رہے ہیں، تاکہ ان درخواستوں کو پیش کریں۔ ان تمام درخواستوں کو جو لوگوں نے لکھی ہیں، جنہیں میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس میں خاص طور پر اس بھائی کی جوان خوبصورت بیٹی ہے جو ایک حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئی ہے۔ میں اس بچی کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، اور میں تمام درخواستوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور ان درخواستوں کے لیے بھی جو صرف خدا اور وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن تو لامحدود خدا ہے، اور تو ہر ایک مقصد اور ہماری تمام درخواستوں کو جانتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں تاکہ تو جواب دے، کیونکہ تو نے اس کا وعدہ کیا ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اب ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو ان چند الفاظ کو قبول فرما جو ہم پڑھنے والے ہیں، اور جبکہ ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں تو انہیں ہماری طرف متحرک کر دے خداوند، اور روح القدس ہر ایک کے قریب آئے اور ہمیں کلام کی تفسیر سے آگاہ کرے، کیونکہ ہم ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जी हाँ जनाब, आप खुद ही इसे चेक कर लें, ये ठीक है। जबकि मैं अब मुड़ रहा हूँ, मेरे पास एक पहले मैं अपने हवाला जात और दीगर बातें बगैर किसी नोट के याद रख सकता था, लेकिन जब से मैंने 25 पार किए हैं, ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, मुझे इसे लिखकर याद रखना पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं, क्या ये ठीक है? क्या आप बेहतर सुन सकते हैं? नहीं, वहाँ पीछे वो अपने सर हिला रहे हैं, शायद इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, और अब ये कैसा है, क्या आप सुन सकते हैं? अब क्या ख्याल है, क्या ये बेहतर है? ठीक है, ये अच्छा है। अब मैं आपकी तवज्जो यशायाह 42:1-7 और मत्ती 4:15-16 की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा, वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी, वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा, वो रास्ती से अदालत करेगा, वो मानदार ना होगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले, जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे, जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने जमीन को और उनको जो उसमें से निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह अनायत करता है, यानी खुदावन खुदा यूं फरमाता है, मैं खुदावन ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाने से छुड़ाए। और अब हम मुकद्दस मत्ती 4:12 से पढ़ेंगे, जो कि इस तरह है। अब जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, तो वो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर वो कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह यर्दन के पार, गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद अपने कलाम को बरकत दे। अब आज सुबह मेरा उन्वान है, बत्ती जलाओ और जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी बात खत्म कर दूंगा, ताकि आप अगले प्रोग्राम के लिए वक्त पर जा सके, जो तकरीबन 45 मिनट बाद होगा। अब जानते हैं मिस्टर मैकनली, मेरे ख्याल में वो मौजूद है, मैंने उसका ट्रक बाहर देखा है कुछ अरसा पहले, जब मैंने यहाँ एरिजोना का अपना पहला सफर किया था। हम शिकार के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे, हम यहाँ सुपरस्टिशन पहाड़ के करीब से जा रहे थे। मैंने एक तवील अरसे से इसके बारे में सुना था और बहुत से अफसाने भी सुने थे जो तोहम परस्ती के बारे में बताए गए थे। मुझे याद है पहली बार जब मैं इसे देखने गया था, वो सुबह होने से पहले का वक्त था और मशरिक की तरफ मेरे ऊपर एक बड़ा भूत का साया लटका हुआ था, जिसे तोहम परस्ती के नाम से जाना जाता है। मैंने इंडियन के बारे में सुना था कि वो डर की वजह से इसके करीब नहीं जाते हैं, कैसे स्पेनिश लोगों ने इब्तदाई दिनों में उनके साथ बुरा सलूक किया, जब वो सोना तलाश कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि इसमें बुरी रूहें रहती हैं। इस सब ने मेरे तजस्सुस को बढ़ा दिया, लेकिन मेरे पास तोहम परस्ती को देखने के लिए सबसे पहले एक टॉर्च थी, और जब तक मैंने उसे देखा कुछ देर बाद सूरज की अजमत अंधेरे पर हरकत करना शुरू हो गई, और जब ऐसा हुआ तो उसने अंधेरे को रोशनी से जुदा कर दिया और अंधेरे को पीछे धकेल दिया। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर अपनी बुलंदी पर पहुंच गई और उसने तोहम परस्ती को जाहिर कर दिया कि वो क्या थी। रोशनी उस पर चमकी और उसने दिखाया कि वो क्या थी, और तोहम परस्ती के बारे में जो डर और खौफ मुझे बताया गया था, जब सूरज ने अपनी पूरी ताकत से उस पर चमकना शुरू किया तो सब कुछ खत्म हो गया। कुदरती रोशनियों में सूरज इस जमीन पर तमाम रोशनियों का बादशाह है। चाहे हम जितनी भी मस्नूई रोशनी हासिल कर लें और चाहे हम जितनी भी उम्दा बरकी बिजली पैदा कर लें, जब सूरज तुलू होता है तो बाकी सब कुछ मांद पड़ जाता है। यही बात खुदा के कलाम के साथ है। जब खुदा का कलाम तुलू होता है तो सारी तोहम परस्ती, तंजीमी जनूनियत और बाकी चीजें दूर हो जाती हैं। और ये बिल्कुल ठीक वो ही दिखाता है जो वो होता है। खुदा ने इब्तिदा में कहा रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। हकीकी रोशनी, बादशाह की रोशनी खुदा के कलाम से आती है। खुदा ने इब्तिदा में रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और जब खुदा का कलाम जाहिर होता है तो हमेशा रोशनी को तारीकी से जुदा करता है। लोग इसके साथ ये या वो बात लेकर उठ सकते हैं, मुख्तलिफ नजरिए उठ सकते हैं, कम्युनिज्म, फैशिज्म और बाकी सब नजरिए उठ सकते हैं, तोहम-परस्ती, फिरके और बाकी चीजें भी उठ सकती हैं। लेकिन जब बाइबल की वो शाही रोशनी उठती है तो बाकी तमाम चीजें तोहम-परस्ती मान पड़ जाती है। लेकिन अब देखें, हम जानते हैं कि ये वहाँ मौजूद है, लेकिन जब तक ये साबित नहीं होता, उसकी रोशनी साबित नहीं होती, तब तक हमें उसके खिलाफ बहस करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये बाकी दूसरी रोशनियों को खत्म कर देती है। यीशु ने कहा, हर एक आदमी का कलाम झूठा ठहरे और मेरा सच्चा। उसका कलाम हर इंसान की बातों से, हर चीज से अफजल है। उसका कलाम रोशनी है, और हम जानते हैं कि शुरू में ये धुंधला और उदास और तारीख रहा होगा, क्योंकि दुनिया बदल रही थी। और जब खुदा ने जाना कि उससे रोशनी की जरूरत है, अब उसका बीज पहले ही जमीन में मौजूद था, क्योंकि उसने इसे वहाँ बोया हुआ था। अब उसे इस बीज को जाहिर करने और इसे जिंदा करने के लिए रोशनी की जरूरत थी, क्योंकि बीज पहले ही मौजूद था। जैसा कि हर दौर में होता आया है, खुदा ने हमें पेशनगोई के वसीले पहले ही बता दिया था कि हर दौर में क्या होगा। उसको सिर्फ इस बात की जरूरत होती है कि उस कलाम पर खुदा का नूर चमके, ताकि वो उस दौर के लिए जिंदा हो जाए बस। और ये उस वक्त तक ऐसा ही करता रहेगा जब तक रोशनी कलाम तक पहुंचती रहेगी। अगर कलाम का बीज है तो ये उसे जिंदा कर देगा। अगर उसका वादा इस दिन के लिए किया गया है, आप एक वक्त में गंदुम या किसी और वक्त में कोई और बीज बो सकते हैं। कुछ बीज दूसरों के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता उगते हैं, क्योंकि ये मौसम पर मुनसर होता है। खुदा का कलाम मुख्तलिफ अदवार में आता रहा है, जैसे शरीयत और फसल और वगैरह वगैरह, जैसे हमने जमानों को देखा था। और हर बार ये बीज में मौजूद जिंदगी को फैलाने वाले नूर के जहूर से रोशन होता है। खुदा के कलाम की बरकत से आज सूरज चमक रहा है, क्योंकि यही सूरज जिससे हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, ये खुदा का कलाम है जो जलवागर हुआ था। ये सूरज की रोशनी जो हम बाहर निकलकर देखते हैं, ये खुदा के कलाम के सिवा कुछ नहीं है। जब उसने कहा रोशनी हो जाए, और क्या होता अगर वो कहता रोशनी हो जाए और वहाँ कोई रोशनी ना होती, तो फिर ये खुदा ने नहीं कहा था। जब खुदा कहता है हो जाए तो हो जाता है, और यूँ हमें मालूम होता है कि वो सूरज जिससे हम अब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, पदेश में कहे गए खुदा के कलाम का इजहार है। और हम जानते हैं खुदा के दिन की रोशनी उसका बेटा है, वो SUN था, ये SON है, SON बाइबल है। वो था, इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। अब्रानियों 13:8, वो कल आज बल्कि अब तक यकसां है। ये हमेशा से खुदा का कलाम है। ये मसीह था जो नूह में था, ये मसीह था जो मूसा में था, ये मसीह था जो दाऊद के अंदर था, जिसने एक रद्द किए गए बादशाह की तरह शहर की जानिब देखा। यहाँ तकरीबन 800 साल बाद मसीह भी इसी शहर में एक रद्द किए गए बादशाह की तरह बैठकर रोया था, जैसे दाऊद रद्द किया गया था। ये हमेशा से मसीह का रूप था, और खुदा के कलाम का मुकम्मल इजहार यीशु मसीह के जरिए जाहिर हुआ, जो कि खुदा का रूप था। रोशनी के बगैर कोई जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती। रोशनी पैदा करती है, रोशनी जिंदगी को पैदा करती है। जिंदगी रोशनी के बगैर पैदा नहीं हो सकती, चाहे जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो, रोशनी का होना जरूरी है। और रोशनी सिर्फ खुदा के कलाम से आ सकती है। खुदा का कलाम रोशनी है जब वो जाहिर होता है। ये सिर्फ एक बीज है जो यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि खुदा ने तमाम बीज बोए हैं। हमारे जिस्म जमीन में पहले से मौजूद थे, इससे पहले यहाँ कोई रोशनी होती। हर एक जिंदगी और चीज यहाँ मौजूद थी, कैल्शियम, पोटाश, पेट्रोलियम और कायनाती रोशनी, ये जो कुछ भी था वो यहाँ मौजूद था। جب خدا نے زمین کو پیدا کیا تھا اسے وجود میں لانے کے لیے صرف اس کے فرمودہ کلام کی ضرورت تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے نباتات یا درخت کی زندگی یا کسی بھی زندگی کے ساتھ کیا تھا۔ کوئی بھی چیز فطری یا روحانی اس کی روشنی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور اس کا کلام روشنی اور زندگی ہے۔ اور جب وہ اپنی روشنی کو بیچتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے ظاہر کرتا ہے تو پھر اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ آج صبح ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے، وہ اس روشنی کو رد کرتے ہیں جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت رد کی گئی تھی۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں وہ غیر قوم کے لیے روشنی ہے، وہ دنیا کا نور ہے، وہ دنیا کا نور تھا لیکن انہوں نے اسے رد کر دیا۔ یہی افسوسناک حصہ ہے، اور جب بھی خدا اپنی روشنی کا اظہار کرتا ہے تو دنیا خود اس روشنی کو رد کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ ہر زمانے میں خدا نے اپنے کلام کا ایک حصہ مقرر کیا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کسی کو بھیجتا ہے تاکہ اس کلام کو ظاہر کرے۔ یسوع کی پیشن گوئی 4000 سال پہلے کی گئی تھی کہ وہ آئے گا اور وہ مسیحا ہوگا، اور جب وہ آیا اس نے مسیحا کے ہر وعدے کو ظاہر کیا، لیکن پھر بھی دنیا کے لوگ چرچز اور وغیرہ وغیرہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ اور کام کر چکے تھے جس نے انہیں یہ جاننے سے دور رکھا ہوا تھا۔ اب اگر کوئی آدمی آتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہم قدرتی حصے لیں گے۔ اگر ایک آدمی جو یہاں اس سورج کی روشنی میں چلنے کے لیے پیدا ہوا ہے، جو خدا نے اس کے لیے پیدا کیا تھا، اور پھر اچانک وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور تہ خانے میں چلا جاتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے، پردے گرا دیتا ہے اور یہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ سورج چمک رہا ہے، وہ اس برکت کو رد کر دیتا ہے، وہ اس کی گرم کرنوں اور زندگی بخش وسائل کو رد کر دیتا ہے، وہ اس روشنی سے انکار کر دیتا ہے جو کہ پھیلی ہوئی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ اس سے انکار کر دیتا ہے۔ آپ ایسے آدمی کو کیا کہیں گے جس نے پردے نیچے گرا دیے ہیں یا تہ خانے میں چلا گیا ہے اور ہر طرف کی ساری بتیاں بند کر دی ہیں اور صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ سورج چمک رہا ہے؟ ایسے شخص کے ساتھ ذہنی طور پر کوئی گڑبڑ ہے، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک فطری ذہن آپ کو بتائے گا کہ اس شخص کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے، کہ وہ ایسا ہے، وہ ہے، اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے، وہ اپنے اسباب کھو بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ان دنوں میں ہو رہا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے ڈانپ رہا ہے۔ حالانکہ آج انجیل کی روشنی کو پہچاننا چاہیے جو کہ چمک رہی ہے۔ جب کوئی آدمی جان بوجھ کر اسے منہ موڑ لیتا ہے، کسی اور چیز میں مصروف ہو جاتا ہے، تو وہ پردہ گرا دیتا ہے، کہتا ہے میں اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو پھر اس شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی گڑبڑ ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں آج کل ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ اب یسوع تمام الہامی نبیوں کی گواہیوں کا مرکز تھا، اور ان کی تمام پیشن گوئیاں اس کے زمانے میں روشنی لائیں جو اس کے زمانے کے لیے پیشن گوئیاں کی گئی تھی۔ اس نے بائبل میں موجود ہر اس کلام کی شمع کو روشن کیا جس نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی۔ ایک کماری حاملہ ہوگی اور وہ ہوئی، یہ سچ ہے، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور وہ تھا، اور اندھوں کی آنکھیں دیکھیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جو بھی اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی وہ اس وقت پوری ہوئی جب وہ زمین پر آیا، اور لوگ یہ کیوں نہیں دیکھ سکے؟ وہ تھا۔ اب یہ ہمارے لیے عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم عقبی آئینے سے پیچھے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اگر آپ اسی طرح پیچھے مڑ کر دیکھتے رہے تو آپ تباہ ہو جائیں گے؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آگے کیا ہے۔ یہی وہ کر رہے تھے، انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ ایک اور دن کی روشنی کی چمک میں زندگی گزار رہے تھے، وہ ایک اور دن کی روشنی کی جھلک میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور میرا خیال ہے آج دنیا کا یہی مسئلہ ہے دوستو، کیونکہ ہم ایک ایسی روشنی کی جھلک میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی اور دن میں چمکی تھی۔ گلیئر ایک جھوٹی روشنی ہے، بالکل جیسے سڑک پر سراب ہوتا ہے، ہم راستے میں چلتے ہیں اور ایک سراب دیکھتے ہیں، وہ سورج کا ایک جھوٹا تصور ہوتا ہے، اور جب تم وہاں پہنچو گے تو اس نے جھوٹ کے سوا کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہوگا، کیونکہ آپ سورج کی تیز چمک میں نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سراب ہے جو ہمیشہ آپ کو وہ دکھاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اور جب لوگ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں نہیں ہے، تو وہ آپ کی رہنمائی ایک سراب میں کر رہی ہے، یہ سچ ہے۔ اور جب آپ چرچ میں داخل ہوتے ہیں اور چرچ میں شامل ہوتے ہیں تو وہاں کوئی سرد عقیدہ या इस तरह की कोई चीज होती है, वहाँ कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है जितना आपके पास दुनिया में था। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह की अंजील की रोशनी को रद्द ना करें, जो आप पर रूह कुद्दस की गर्म किरणें नाजिल करती है और आपको मसीह यीशु में एक नई मखलूक बना देती है। किसी दूसरे ऐद की झलक में चलने की कोशिश ना करें। अब वो चमक शायद दूसरे जमाने में ठीक थी, शायद उनके लिए बिल्कुल ठीक थी। ये बात हमारे खुदावंद यीशु के जमाने में साबित हुई। वो उस जमाने में कलाम की रोशनी था, वो नूर था। वो उस वक्त तक रोशनी नहीं था जब तक वो मौजूदा कलाम को साबित करने के लिए जमीन पर नहीं आया था। आप जानते हैं, उसने कहा यूहन्ना एक रोशन और चमकता हुआ उजाला था और तुमने थोड़ी देर के लिए उससे मोहब्बत की। यकीनन, क्योंकि यूहन्ना की पैदाइश से 712 साल पहले यशायाह ने पेशनगोई की थी कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज सुनी, और फिर मलाकी जो नबियों में आखिरी नबी था उसकी आमद से 400 साल पहले कहा गया है। उसने मलाकी तीसरे बाब में उसने कहा, देखो मैं अपने रसूल को भेजता हूँ ताकि वो मेरे आगे राह तैयार करे। यहाँ जमीन पर यूहन्ना था जो उस तहरीरी कलाम को जिंदा कर रहा था। वो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज था और वो हमेशा वो अपने आगे मसीहा की राह तैयार कर रहा था। और यीशु ने कहा, तुमने उसकी रोशनी में चलना पसंद किया क्योंकि वो जलता हुआ और चमकता हुआ चिराग था। और यूहन्ना उसने कहा, अब मुझे कम होना चाहिए, मेरी रोशनी खत्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपना वो वक्त पूरा कर लिया है जो मेरे बारे में पेशनगोई की गई थी। उसकी सुनो, वही वाहिद है, उसकी पैरवी करो। उस दिन में रहकर उसने ये साबित किया। अब यहूदियों ने समझा कि वो हकीकी नूर में इबादत कर रहे हैं। उन्होंने समझा कि वो खुदा की इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसी खुदा को वो ठुकरा रहे थे, बिल्कुल जिसके मुतालिक वो सोच रहे थे कि वो उसकी इबादत कर रहे हैं। उसी खुदा को वो मसलूब कर रहे थे, वो खुद खुदा का मजाक उड़ा रहे थे और उसे लोगों के लिए एक मजाक बना रहे थे। बिल्कुल वही खुदा था जिसकी वो इबादत कर रहे थे। क्या मैं ये बात एहतराम और तहजीम के साथ कह सकता हूँ? लेकिन रोशनी लाने के लिए ये किया गया क्योंकि जैसा कि हमारे भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था, हम आपकी सोच से ज्यादा ताखीर से जी रहे हैं। इन दिनों में से किसी दिन कुछ होने वाला है, बहुत देर हो जाएगी, लोग अहवान की छाप को ले लेंगे और उन्हें मालूम तक नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों गड़े में गिर जाएंगे, यीशु ने कहा है, और हम उससे ज्यादा करीब हैं जितना कि हम सोचते हैं। बहुत से ईमानदार लोग उसकी पैरवी करते हैं यहाँ तक कि उन्हें मालूम भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अब वो घड़ी करीब है जबकि नूर चमक रहा है। अंजील की रोशनी यीशु मसीह के जी उठने की कुवत में है। वो अपने आप को जाहिर कर रहा है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसने इस दिन के लिए ये सब कुछ तैयार किया था, जो चीजें उसने इस दिन के लिए मुकरर की थी वो इसी दिन में जरूर पूरी होनी है। अगर चर्च इसे कबूल नहीं करेगा तो खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा करने के काबिल है। वो अपना पैगाम जरूर पहुँचाएगा क्योंकि उसने हमेशा ऐसा ही किया है, वो हमेशा ऐसा ही करेगा। लोग समझते हैं कि वो नूर में चल रहे हैं, बाप दादा की रवायात में चल रही हैं, और पहली चीज आप जानते हैं, वो एक रोशनी की झलक में चल रही है, उस रोशनी में नहीं। उन्होंने उस नूर को टुकड़ा दिया होता है जिसकी वो इबादत करने का दावा करते हैं। उसके कामों ने मुकम्मल शनाख्त करवाई कि वो कौन था। यीशु ने खुद कहा, तुम किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? उसने कहा, कौन साबित कर सकता है जो कुछ मैंने कहा है या जो कुछ मैंने दावा किया है वो आसमानी बाप ने मेरे जरिए साबित नहीं किया है। उसने ये आप पर साबित किया है कि वो दुनिया का नूर है, क्योंकि ये पेशनगोई की गई थी कि मसीहा ऐसा ऐसा होगा और यहाँ जिंदगी की कली खिल उठेगी, लेकिन उनकी रवायात ने उन्हें कलाम की हकीकी रोशनी से जुदा कर दिया था। फरीसियों, सदूकियों, हेरोदीसियों के हामियों ने और बाकियों ने दुनिया को इस कदर जकड़ा हुआ था जैसे उन्होंने हर दौर में जकड़ा हुआ था। वो हकीकी नूर को नहीं देख सके, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। वो झलक में चलने के आदि थे, अगले दिन ये होगा और कल ये होगा, हम इसमें शामिल होंगे और बस ऐसा ही होगा, हम उसमें शामिल होंगे। हमें मालूम है ये एक नजर का धोखा है। ये सुमसी आज एक इंसानी दिल के लिए उतना ही हकीकी है जितना वो कभी था। उसकी ताकत और उसकी हजूरी आज भी उतनी ही हकीकी है जितनी पहले कभी थी। देखो, थोड़ी देर बाकी है, दुनिया मुझे फिर न देखेगी। कॉस्मोस, ये दुनिया का निजाम है, मुझे दोबारा नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बल्कि दुनिया के आखिर तक तुम्हारे अंदर हूँ। जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे बल्कि इनसे बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। ये अजीम वादा आज के दिन के लिए है। दुनिया जितनी अंधी हो सकती है उतनी अंधी है, लेकिन फिर भी तुम मुझे देखोगे, और यही चीज है जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फुल गोस्पल का मतलब है यीशु मसीह को उसके जी उठने की कुदरत में बयान किया जाए और उसके तमाम वादों की तकमील हो, ताकि रूह कुद्दस इन चीजों को जाहिर करे और इन्हें दुरुस्त करे, और जिसका खुदा ने वादा किया है और वो उसे पूरा करेगा। जी हाँ जनाब, वो कलाम के जरिए और उन कामों के जरिए जो वो कर रहा था पूरी तरह से साबित किया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। हालांकि साबित हो गया था कि उसकी रोशनी ही कलाम है। कलाम ने कहा किताबे मुकद्दस में ढूंढो, लेकिन उनकी रवायात जिनमें वो रह रहे थे वो किसी और जमाने की झलक थी। उन्होंने कहा हम मूसा पर ईमान रखते हैं, मूसा वो है जिस पर हम ईमान रखते हैं। हम नहीं जानते कि तू कहां से आया है, तूने अपनी तालीम कहां से हासिल की है, क्या तू साबित कर सकता है कि तू कौन है। उसके कामों ने गवाही दी कि वो कौन था। काश उन्होंने फक कलाम पढ़ा होता, वो उसे पढ़ रहे थे लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे थे। मेरे काम मेरी गवाही देते हैं। एक आदमी अपनी असनाद से पहचाना जाता है, और खुदा का कलाम सन्नत है, वो खुदा के कलाम की तरफ से भेजा गया है और खुदा के कलाम के साथ कायम है। हर दौर में ऐसा ही हुआ है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। हम कल की रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते। कल की रोशनी तारीख है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। कल चमकने वाले सूरज से आप आज गर्म नहीं हो सकते हैं। आजकल चर्चिस का यही हाल है, लोगों का मसला यही है, जो कुछ कल हुआ था उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। आप आग की तस्वीर के साथ गर्म नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, उसमें कोई गर्मी नहीं है। गुजरे कल के सूरज में कोई गर्मी नहीं है। सूरज की रोशनी कुदरती तौर पर जमीन पर भेजी जाती है ताकि आने वाली फसल के लिए अनाज को पकाया जाए। हर रोज एक नया सूरज तुलू होता है। आज जो सूरज चमक रहा है वो कनाडा में गंदुम को उगा रहा है, वही सूरज है। ठीक है, अगर ये ना होता, इससे ज्यादा सूरज ना होता, तो आने वाले जुलाई या अगस्त में ये अनाज कभी पक नहीं सकेगा। इसका मजबूत और ज्यादा ताकतवर होना जरूरी है। हर दिन ये बढ़ता जाता है और पुख्ता होता जाता है ताकि अनाज को सामने लाए। अब अनाज अगर खुद ही, अगर वो खुद ही पकना शुरू हो जाए, अनाज खुद आ जाए, अगर ये अनाज के साथ ठीक रहता है तो ये सिर्फ अनाज को तैयार करता है। हर रोज इसके इर्द गिर्द का भूसा, कैल्शियम और जो कुछ भी इसमें जाता है, जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होती जाती है वैसे वैसे अनाज पकता जाता है। लेकिन अगर आप अगस्त में चमकने वाली धूप को आज गंदुम पर डालेंगे तो वो इसे मार डालेगी। यकीनन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसे अपने मौसम में ही आना चाहिए, इसलिए खुदा की गंदम और अनाज को उसी मौसम में पकना चाहिए जिस मौसम में वो होता है। पर सूरज कैसे निकल सकता है? भाई गंदम मर जाएगी, फल मर जाएगा। आज के सूरज के जरिए जो आज मौजूद है, बल्कि आज चमक रहा है, ये आने वाली फसल को पका रहा है। अनाज को रोशनी के साथ ही पकना चाहिए। लेकिन बात ये है कि आज कलीसिया का अनाज पकना नहीं चाहता है, ये वैसा ही रहना चाहता है जैसे मूडी, सिंकी, फेनी, नॉक्स और कैल्वन के जमाने में था। वो सब ठीक थे, वो उस वक्त की रोशनी थे, लेकिन ये एक और घड़ी है, ये एक और जमाना है, ये अंजील की तरक्की है, ये अपनी बलूगत को पहुंच रही है। लिहाजा हम उसमें नहीं रह सकते हैं जो लूथर ने कहा है, वेस्ली ने कहा है, या उनमें से बाकियों ने कहा है। हम उस रोशनी में रह रहे हैं जिसकी आज के जमाने के लिए पेशनगोई की गई है। हम सातवें कलीसिया जमाने में हैं, तीसरे या चौथे कलीसिया जमाने में नहीं है। बीज उसे कबूल करने के काबिल होना चाहिए, अगर वो नहीं करता तो वो गिर जाता है और फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। अगर वो रोशनी के साथ आगे बढ़ता है तो बीज रोशनी के साथ पकता है। इसलिए कलीसिया को हर दौर में रोटी पेश करनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने हुक्म दिया था इंसान हर उस बात से जिंदा रहेगा जो खुदा के मुंह से निकलती है। वो रोटी जिसकी हमें जरूरत है बाइबल में मौजूद है, वो खुदा के मंसूबे का मुकम्मल मुकाशफा है। ये यीशु मसीह का मुकम्मल मुकाशफा है। हम इसमें कुछ भी शामिल नहीं कर सकते हैं, ना ही इसमें से कुछ निकाल सकते हैं। जो कोई ऐसा करेगा उसका नाम किताबे हयात से निकाल दिया जाएगा। हमें इसमें कोई अकीदा शामिल करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है जैसे इसे होना चाहिए। हम इसमें कुछ भी शामिल नहीं करते, इसमें से कुछ भी नहीं निकालते, इसकी मुनादी उसी तरह करते हैं जैसे ये है, और खुदा है जो इसे साबित करेगा। हर अहद जिसका उसने वादा किया है वो बिल्कुल उसे पूरा करेगा। हमें इसमें से कुछ निकालने या इसमें कुछ शामिल करने की इजाज़त नहीं है, बस इसे वैसा ही छोड़ दें। जैसा ये है। लेकिन आप देखें, आज हमें लोग ऐसे लगते हैं जैसे उस दौर में थे और वो दोबारा उस चमक में जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। कलीसिया को देहों के पकने के साथ साथ पकना चाहिए, क्योंकि आदमी सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा बल्कि खुदा की हर एक बात से, जो कि जिंदगी की रोटी है, ना कि कलाम के किसी हिस्से से, खुदा के कलाम की हर एक बात से, हर जमाने में बस यहाँ बैठकर हर वक्त फलियां और आलू खाते ना रहे। इसके साथ और भी चीजें हैं। जब हम खुदा के अजीम अशाया के मुकम्मल कोर्स में जाते हैं जो उसने अपने लोगों के सामने रखा हुआ है, रूहुल कुद्दस की ताकत, उसकी खुशी और उसकी कुव्वत और रूह है जो हमें दिया गया है। जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, क्योंकि मैं जिंदा हूँ तुम भी जिंदा रहोगे। ये वो वादे हैं जो यीशु ने अपनी कलीसिया से किए हैं। और फिर भी आज हम लोगों को किसी दूसरे दौर में वापस जाने की कोशिश करते हुए देखते हैं जो गुजर चुका है। लूथर का जमाना एक अजीम जमाना था। उसने कैथोलिक चर्च की खराबी देखी, कम्युनियन को देखा, उस नौजवान पादरी ने देखा कि ये गलत है, ये मसीह का हकीकी बदन नहीं था, ये रोटी का एक टुकड़ा था जिसे उन्होंने बरकत दी थी, और उसने देखा कि मैं हकीकी खून नहीं था बल्कि वो खून की नुमाइंदगी करती थी। बस उसने इस बात पर एहतजाज किया क्योंकि वो उस वक्त की घड़ी थी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पास कितने पादरी थे और बाकी क्या कुछ उनके पास था। खुदा ने एक ऐसे आदमी को पकड़ दिया जो रोशनी को चमका सकता था। आमीन। उसने ईमान के जरिए राष्ट्रवाद ठहरने को कबूल किया और उसने लूथर के दौर की रोशनी को चमकाया, और इसके बाद उसके साथ साथ चलते हुए अपना वक्त पूरा किया। एक और वक्त आ गया ताकि कलीसिया अपने गुनाहों से दूर हो जाए और पाक हो जाए। फिर जॉन वेस्ली आ गया, इंग्लैंड से एक छोटा सा एंग्लिकन आदमी आया जो कि एंग्लिकन कलीसिया से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसने अंजील की रोशनी को देख लिया। ये फजलिफिया के जमाने का जाहिर होने का वक्त था, और जब उसने ऐसा किया तो उसने फजल के दूसरे अमल की मुनादी की, यानी यीशु मसीह के खून के वसीला से पाकीज़गी है। उसकी रोशनी में कोई नहीं ठहर सकता था। उसे लूथर की तरह एक जुनूनी समझा जाता था, लेकिन उसने उनमें से हर एक के खिलाफ एहतजाज किया और रोशनी को चमकाया, क्योंकि वो वक्त की रोशनी था। खुदा ने एक आदमी को देखा जिसका नाम जॉन वेस्ली था, वो बत्ती जला सकता था, उसे वो मिल गया। और लूथर ने भी अपने जमाने में बत्ती जलाई थी। इसके बाद पेंटिकोस्टल भाई आते हैं, वो अपने जमाने में रूह की नियमतों की बहाली के साथ वापिस आते हैं। नियमतों की बहाली हो गई, जुबानों में बोला गया, शिफा की नियमत और बाकी चीजें कलीसिया में बहाल हो गई। अब उन्होंने बिल्कुल वही किया जो कलाम ने कहा था कि वो करेंगे, और जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने इस बात को जाहिर किया, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्या आप महसूस करते हैं कि हम इससे आगे निकल चुके हैं? हम दुल्हन के वक्त में हैं, इंतखाब के वक्त में हैं। ये वो वक्त है जो दुल्हन ने कहा था, हमारा वक्त आएगा। सारी टिड्डियों से जो बच निकला है, जोएल 2:28 ने कहा है, सारी टिड्डियों से जो बच गया उसे दूसरा गोल निकल गया, और जो कुछ दूसरे गोल से बचा उसे तीसरा गोल चट कर गया। इनमें हर एक तंजीम मौजूद है। अगर आपने बाइबल की 7 मोहरों को पढ़ा है, इनमें से हर एक असलाहकार ने आगे बढ़कर कलाम की मुनादी की, लेकिन कोई ना कोई बात छोड़ दी। फिर असलाहकारों के जाने के बाद उन्होंने क्या किया? रोशनी मान पढ़ना शुरू हो गई। मस्जिद रोशनी में चलने की बजाय उन्होंने इसे मनज़म कर लिया, और जब उन्होंने इसे मनज़म कर लिया, कहा हम इस रोशनी पर ईमान रखते हैं, यही नूर है, यही वो है, उन्होंने क्या किया? वेस्ली सीधा सीधा चला और उनसे दूर हो गया। वेस्ली ने क्या किया? उसके बाद वो मुनज्जम हो गए, और उसके भाई जॉन और चार्ल्स और उसके साथ एसबरी और बाकी आते गए, और उनके दिनों के बाद उन्होंने मेथोडिस्ट चर्च नामी तंजीम कायम कर ली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मजीद रोशनी को रद्द कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यही रोशनी है, यही वो है। फिर पेंटिकोस्टल लोग आए और उन्होंने दिखाया कि खुदा अब भी रूह कुद्दस का बपतिस्मा देता है, वो अब भी अपनी शिफा देने वाली कुदरत नाजिल करता है जिसे उन्होंने रद्द कर दिया है। उन्होंने क्या किया? वो फौरन इन चीजों से दूर चले गए, क्योंकि ये एक और रोशनी थी। अब ये क्या है? हमें तकरीबन 60 साल गुजर चुके हैं और पेंटिकोस्टल भी मुनज्जम हो चुके हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, और खुदा ने इनसे भी मुंह मोड़ लिया है और दूर चला गया है, और उस गिरोह में से एक बरगजीदा दुल्हन को बाहर ले आया है। इसके बाद कभी कोई और कलीसिया जमाना नहीं आएगा। फिलदेल्फिया का कलीसिया जमाना वेस्ली का था, और लदीकिया का कलीसिया जमाना पेंटिकोस्टल तंजीम का है, जो कि बिल्कुल सीधा हैवान की छाप में जा रहा है। ये बाइबल है, जैसे ये भाई चंद लम्हे पहले कह रहा था, ये सच है, ठीक है। ये सब तंजीमें हैं क्योंकि इन्होंने मजीद रोशनी में चलने से इनकार कर दिया है। वो खुद को मुनज्जम करते हैं और कहते हैं हम इस पर ईमान रखते हैं, जब खुदा कुछ करता है तो उसकी किताबे मुकद्दस से तस्दीक करें। फरीसियों ने कहा ये हमारे पास है। सदूकियों ने कहा ये हमारे पास है, लेकिन ये खुदा के पास था। खुदा ने बटन दबाया और रोशनी हो गई, लेकिन इसे वैसे ही रद्द कर दिया गया जैसे हमेशा से रद्द किया गया है। कैथोलिक चर्च ने लूथर को रद्द कर दिया, वेस्ली ने लूथर को रद्द कर दिया, और इसी तरह पेंटिकोस्टल ने वेस्ली को रद्द कर दिया, और आज रूहुल कुद्दस पेंटिकोस्टलों को रद्द कर रहा है। आप बाकी लोगों की तरह रस्मी और ठंडे हो रहे हैं, हर कोई इसे देख सकता है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आप बाइबल के सबसे करीब हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ हूँ। लेकिन सुने, अपनी आंखें खोलें और देखें कि हम किस दौर में जी रहे हैं। अब वक्त है कि चाबी दोबारा घुमाई जाए और एक रोशनी जल उठे, ताकि एक दरख्त सामने आ सके। बाइबल में मलाकी 4 में कहा है, वो उसे लोगों के पास भेजेगा और वो असल ईमान को दोबारा बहाल करेगा जो लोगों के पास था। उसने वादा किया है, उसने हमेशा ऐसा ही किया है। उसने अपना कलाम भेजा और नबी आए, क्योंकि कलाम नबियों के पास आया था और उनके पास कलाम था, और उन्होंने उसे जिंदा किया। उस दौर के अद्वारों और निजामों ने हर दौर में उन्हें रद्द किया, और आज भी वो ऐसा ही करेंगे। खुदा आज भी उतना ही कादिर है जितना कि वो उस वक्त था। उसने कभी तंजीमों को खड़ा नहीं किया। किसी भी मूर्ख से पूछे, तारीख में देखें, जब कोई तंजीम कायम हुई वहीं खत्म हो गई और दोबारा कभी नहीं उठी। खुदा लोगों से बात करता है, ठीक है, और खुदा ने आखिरी दिनों में दोबारा ऐसा करने का वादा किया है, और वो करेगा जिसका खुदा ने वादा किया है, वो जरूर करेगा। एक बत्ती जलाएगा ताकि आज के वादाशुदा कलाम की तस्दीक कर सके। यीशु ने कहा, जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम की आमद पर होगा। आप दिखाते हैं, आप देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं। यहोवा को देखें, उसने क्या किया है। हमारे बाप ने हर चीज को पोजीशन में रखा हुआ है। लूत दुनिया में यानी सदूम में रह रहा था, जहाँ हर तरफ गुनाह था, और वो रूहानी तौर पर नीम गर्म हालत में था। वहाँ एक पैगंबर भेजा गया जिसने उसे भी कलाम सुनाया। वहाँ इब्राहिम का ग्रुप भी था जो बरगजीदा और अलग किया गया था, जिसके साथ वादा किया गया था, और वो सच्चे दिल से बेटे का मुंतजिर था। लूत भी बेटे की तलाश में था, लेकिन उस सूरत में नहीं था जिस सूरत में इब्राहिम उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? ये होने से एन पहले खुदा नीचे आया और अपने आप को जिस्म में जाहिर किया और ऐलान किया कि वो कलाम है, क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और ख्यालों को और इरादों को जांचता है। यीशु ने कहा है, इब्ने आदम की आमद पर दोबारा ऐसा ही होगा। ये इलाही वादे हैं, ये यीशु मसीह के होंठों से निकले हैं। दोनों आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन कलाम कभी नहीं चलेगा। खुदा अभी तक पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा करने की कुदरत रखता है। हो जी हाँ, हम अपने सफर में हैं, बिल्कुल जैसे इसराइल था। इसराइल अपने सफर में हर रोज ताज़ा मन हासिल करता था, क्योंकि ताज़ा मन नाजिल होता था। हम लूथर की रोशनी में नहीं रहते हैं, वेस्ली की रोशनी में नहीं रहते हैं, या पेंटिकोस्ट की रोशनी में नहीं रहते हैं। हम ताज़ा मन के जमाने में रहते हैं। उन्होंने उस मन को ज्यादा देर तक महफूज रखने की कोशिश की, तो क्या हुआ? वो खराब हो गया और उन्हें मार डाला। यही वजह है कि हमारे पास बहुत सारे रूहानी तौर पर मुर्दा नाम नहाद क्रिश्चियन हैं। वो किसी और दिन की चमक को ले रही हैं। वो ऐसा मन खा रही हैं जो पहले ही आलूदा हो चुका है। जिस तरह गंदम पर भूसी होती है, अगर वो गंदम पर ना जाए तो गंदम से अलग हो जाती है, और जब रोशनी को रद्द कर दिया जाता है तो अंधेरे में जाने के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता है। रात का कोई भी हिस्सा जो रोशनी लेने से इनकार करता है, वो दोबारा अंधेरे में लौट जाता है। अंजील में भी ऐसा ही है। हर जमाने में यही बात साबित हुई है। हम इस जमाने में जी रहे हैं। कल का मन आलूदा है। मैंने लोगों को कहते सुना है, 40 साल पहले मैंने फला फला काम किया, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आज के बारे में क्या ख्याल है? आग में जलती हुई कलीसिया के बारे में क्या ख्याल है? हम कल की बातें तो करते हैं, लेकिन आज कलीसिया की हालत क्या है? और आज एक फर्द के तौर पर तुम्हारी अपनी हालत क्या है? क्योंकि गुजरे हुए कल का काम आज के लिए काफी नहीं होगा, वो कल के लिए ठीक था। लूथर का पैगाम उस वक्त की रोशनी था, जैसा कि यूहन्ना का पैगाम था, लेकिन उससे भी बड़ी रोशनी जाहिर हुई। इसी तरह लूथर एक अजीम रोशनी था, और हमने एक सीजन के लिए उससे लुत्फ उठाया, लेकिन एक और रोशनी आई जिसने उसे बंद कर दिया। इसे क्या करना चाहिए था? इसे उसके साथ मिल जाना चाहिए था, और वो रोशनी कामिल रोटी के टुकड़े तक पहुंच गई और खुदा के कामिल मन तक पहुंच गई। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसे मनज़्ज़म कर दिया। इंसान उसमें फंस गया है, बजाय इसके कि खुदा इसकी रहनुमाई करता, इंसान और उसके निजाम ने इसमें घुसकर इसे अंधा कर दिया। हो, आज दुल्हन के इस दरख्त को काट दिया गया है। कोई भी शाख जो फल नहीं देती उसे काट दिया जाता है। यीशु ने मुकद्दस यूहन्ना 15 बाब में कहा है, अब जो हुआ है हम देख सकते हैं कि इन्हें काट कर अलग कर दिया गया है, छांट दिया गया है। याद रखें, दरख्त का दिल बिल्कुल दरख्त के बीच में होता है, और फल जब भी पकेगा, आखिरी जगह जहां कभी दरख्त फल लाएगा, वो डाली का आखिरी हिस्सा होगा, क्योंकि ये ताजगी है जो जिंदगी के मरकज से आती है, जो कि बीज में होती है। ये दुल्हन का दरख्त है, यीशु दुल्हन था, वो एक दरख्त था, उन्होंने उसे काट दिया। वो जिंदगी का दरख्त था जो बागे अदन में था, उन्होंने उसे काट कर एक रोमी दरख्त पर लटका दिया ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए। उसने क्या किया? खुदा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया। और आज एक दुल्हन का दरख्त मौजूद है। इसका आगाज वहाँ शुरू में हुआ था, पेंतिकोस के दिन हुआ था। सुने, आप लोग जो कलीसिया से तल्लुक रखते हैं, कलीसिया कभी भी नकाया रोम में शुरू नहीं हुई थी, ये यरूशलम में शुरू हुई थी। पेंतिकोस के दिन कलीसिया का आगाज हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया? बस मुनज्जम होते गए और खुदा शाखें काटता गया। फिर इन्होंने लूथर को मुनज्जम कर दिया, शाखें कटती गई। वेस्ली आया, शाखें कट दी गई। पेंतिकोस्त आया, शाखें कटती गई, जब तक ये ना आ गया। लेकिन खुदा के पास एक शजरे दुल्हन आने वाला था। खुदावंद फरमाता है, जो कुछ टिड़ियां खा गई हैं और कीड़े खा गए हैं, मैं उसे बहाल करूंगा। मलाकी 4 हमें बताता है कि हमें असल ईमान की तरफ वापस लाया जाएगा, जैसा पेंतिकोस के दिन था। वालदों का ईमान, हम ईमान रखते हैं कि वो आएगा। मैं समझता हूँ कि अब उसका वक्त है। डालियाँ सूख गई हैं और खुश्क हो गई हैं, और वो उन्हें दरख्त से हटा देंगे ताकि फल दरख्त की चोटी पर अपनी पूरी शक्ल में लग सके। ओ मेरे खुदाया, ये सब रोशनियाँ ठीक है, लेकिन कलीसिया ने जो रोशनी आज हासिल की है, वो इनसे बढ़कर है। ये फसल की कटाई खत्म करने का वक्त है, और हमें मालूम है कि खुद दरख्त या गंदम को पकने के लिए रोशनी चाहिए। अपने आप को एक पत्ते से अनाज तक और अनाज से आगे तक बढ़ाना है। ये रोशनी के साथ ही पक सकता है। तमाम जमानों की रोशनी बस इस जमाने की गवाही दे रही थी। लूथर की रोशनी वेस्ली की रोशनी की गवाही दे रही थी। वेस्ली ने पेंतिकोस्त की रोशनी दिखाई। ये वही रोशनी है, सिर्फ रोशनी ही इसे पका सकती है। काश लोग इसे समझ सकते। कुछ अरसा पहले मैं एक छोटा सा मजमून पढ़ रहा था, जिसमें इंग्लैंड की मलका, ये वाली नहीं दूसरी मलका थी, वो एक कागज बनाने वाली कंपनी से मिलने गई, जो बहुत उम्दा कागज बना रही थी। और जब उसने कंपनी के सदर का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने उसे पूरी तरह तफसील के साथ बात बताई। वो देखना चाहती थी कि वो बारीक कागज कैसे बनता है। वो उसे ले गया और उसे तमाम बड़े बड़े प्रेस और बाकी चीजें दिखाई। और उन दिनों में वो चिथड़ों से कागज बनाते थे, हमें अच्छी तरह याद है। चुनाचे वो एक कमरे में गया और दरवाजा खोला, तो वहाँ चिथड़ों के गुच्छे के सिवा और कुछ नहीं था। मलका ने हैरत से कहा, ये गंदी चीजें क्या हैं? उस आदमी के कंपनी के सदर ने कहा, ये पुराने कपड़े हैं, देखें ये गंदे हो गए थे, हम इन्हें फेंकते नहीं है, बल्कि ये कल का कागज है। उसने कहा, मुझे ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा, आप इसे कल समझ जाएंगी। चुनाचे जब उन्होंने उन चित्रों को प्रेस के जरिए सफाई के एक मखसूस अमल से गुजारा और किसी अमल से गुजारा और जब वो बाहर आए, तो वो कागज की खूबसूरत शीटें थी। सदर ने सोचा वो मलका को चीज दिखाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने उस पर मलका की तस्वीर रखी और उसे उस खूबसूरत कागज में दबा दिया। जब मलका ने उसे वसूल किया, तो उसने उसमें अपनी तस्वीर देखी, जो कल तक गंदे चितड़े थे, क्योंकि उन्हें एक खास अमल से गुजारा गया था। हो काश लूथर, वेस्ली और बाकी सब देख सकते कि कल की चीजें सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल की जा सकती हैं, जब वो किसी अमल से गुजरती हैं। जब रूहुल कुद्दस रोशनी को जाहिर करता है, तो रास्तबाजी से तकदीस तक और रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे तक ले जाता है। और अब मसीह की आमद की आखिरी घड़ी है। इसमें मलका की तस्वीर नहीं है, बल्कि आसमान के बादशाह की है, जो अपनी नुमाइंदगी कर रहा है, क्योंकि कलीसिया अकलियत के करीब तर हो गई है, जबकि खिदमत उसी किस्म की खिदमत होनी चाहिए जो उसके पास थी। वो लोग जो लूथर के जमाने में मर गए, देखें, वो मखरूत के नीचे चले गए। ये मखरूत की तालीम नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मिसाल है। वो मखरूत बिल्कुल कामिल है। अगर आप में से कोई वहाँ गया हो, तो आप उस तरह का ब्लेड भी मुश्किल से उसमें से गुजार सकते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं, उसमें कोई सीमेंट वगैरह नहीं है, उसका फन तामीर बहुत आला है। अब वो चोटी का पत्थर खो चुके हैं, वो नहीं जानते हैं वो कहाँ है। अब जब वो चोटी का पत्थर वापस आएगा, तो बिल्कुल उसके बाकी हिस्सों की तरह होगा। वो खुले हुए उस पत्थर के साथ जुड़ जाएगा। अगर आप उस पर चोटी का पत्थर लगाते हैं, तो आपको इसी तरह लगाना पड़ेगा। और जब यीशु वापस आएगा, तो वो एक ऐसी कलीसिया पाएगा जो साफ सुथरी होगी, किसी दाग या किसी जुरी के बगैर होगी। और ये वही खिदमत होगी जो उसके पास थी। ये चोटी के पत्थर को वापस ले आएगी, जैसे मेरे हाथ का यहाँ एक साया है, ये एक साया है। जैसे जैसे मेरा हाथ मजीद गहरा होता जाएगा, यहाँ एक मनफी है, यहाँ एक मुस्बत है। मनफी और मुस्बत के तौर पर ये गहरा होता जाता है, तारीख तारीख और तारीख होता जाता है, और आखिरकार ये एक साथ मिल जाते हैं और मनफी और मुस्बत एक हो जाते हैं। फिर कलिसिया और मसीह एक दुल्हन की तरह मुत्तहिद हो जाते हैं और वही रूह जो उसमें थी इस पर नाजिल होगी। फिर ये कलिसिया रातबाजी से तकदीस और रूह कुदस के वक्त उसमें से आखिरी अयाम में दाखिल हो जाएगी और अब इसे खुदावन की आमद के लिए तैयारी करनी है। हो पेंटिकोस्टल भाई इस पर खुरदरे ना बने, कलाम से चमके और इसके हर हिस्से पर ईमान रखे, इन निजामों और बाकी चीजों में ना पड़े जैसे आजकल हो रहा है। इस पर हैरान ना हो क्योंकि चोटी का पत्थर जल्द आ रहा है, पुकार रहा है अब्बा यानी ए बाप, मेरे खुदा मेरे खुदा। जी हाँ, मैं पूरे दिल से इस पर ईमान रखता हूँ। क्या आप इसे देख रहे हैं? क्या आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? ये मसीह है जो अब कल के चितड़े ले रहा है, लूथरन मेथोडिस्ट प्रेस्बिटेरियन और वगैरह वगैरह को ले रहा है, और वो इसे एक अमल से गुजार रहा है। कौन से अमल से? रूहुल कुद्दस के अमल से। इनके पास इसके अलावा क्या था? ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो अपनी सूरत नहीं बना लेता, जब तक कलीसिया और मसीह इतिहाद में एक नहीं बन जाते। ए खुदा ये अता फरमा, मुझे यकीन है कि आप इसे देख रहे हैं। अगर आप इसे देख रहे हैं, ये बात मुझे एक कहानी की याद दिला रही है। जब अजीम वेलिश की गद्दारी चल रही थी, यहाँ कौम में से कुछ अजीम आदमियों ने सोचा कि वो वहाँ जाएंगे और वेल्श की गद्दारी को देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। और जब मालूम करने के लिए वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये किस इमारत में मुनक्कद की गई है। जब वो वेल्स पहुंचे तो इधर उधर घूमकर पूछना शुरू किया कि वो इमारत कहाँ है। उन्होंने एक छोटा सा अफसर देखा जो कोने में खड़ा हुआ था और बहुत खुश था, अपनी छोटी टॉमी हैट के साथ खड़ा हुआ था और वो अपनी छड़ी को इस तरह घुमा रहा था। और फिर वो आदमी उसके पास आया और बोले, जनाब क्या आप बता सकते हैं कि वेल्स की बेदारी का इनकार किस इमारत में किया गया है? उसने कहा, जी हाँ जनाब, मैं बेदारी हूँ, मैं ही बेदारी हूँ। क्यों? क्योंकि वो खुशी और रोशनी को जाहिर कर रहा था और वेल्च की बेदारी उसके अंदर थी। बस आज पेंटिकोस्ट की कलीसिया को भी ऐसा ही करना चाहिए, पूछना चाहिए यीशु मसीह कौन है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। उसकी अंजील की रोशनी को इस जमाने के कलाम के साथ चमकना चाहिए। कौम के सामने यीशु मसीह जाहिर होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही जैसे उस वक्त हुआ था। वो वेल्च बेदारी से इतना लबरेज था कि वो खुद वेल्च बेदारी बन गया था। हमें मसीह से इस कदर मामूर होना चाहिए ताकि हम उसके कलाम की कुवत में उसकी अकासी करें। आज हमारे लिए ये बहुत ज्यादा है। भाइयों, दुनिया के कामों में मत पड़े, मत झुके। ये परेशानियां हैं जो आपको दूर ले जाती हैं। अंजील के साथ रहें, हर बात पर गौर करें, किसी फादर की कही हुई बातों पर वापस ना जाएं। आए अभी देखते हैं यीशु ने इस दिन के बारे में क्या कहा था। जी हाँ जनाब, हमें इस जमाने की रोशनी को जाहिर करना है, अंजील को जाहिर करना है। लूथर अपने जमाने का नूर था, वेस्ली अपने जमाने का नूर था, पेंटिकोस्ट अपने जमाने का नूर था, लेकिन हम अब सड़क पर बहुत आगे हैं। हम दुल्हन में आ रहे हैं, बुलाए हुए और चुने हुए हैं। याद रखें, अगर आप हैं तो आप बिल्कुल उस अफसर की तरह हैं जिसके अंदर बेदारी थी। याद रखें, ये सातवां कलीसियाई दौर है, ये लोदिकिया का कलीसियाई जमाना है। मुकाशवा 3 के मुताबिक वो मसीह को रद्द कर रहे हैं। बाइबल में मजकूर हर कलीसियाई दौर में से लोदिकिया का दौर सबसे बदतरीन दौर था। इस कलीसिया ने उसे बाहर निकाल दिया, उसे रद्द कर दिया और उसे अलग कर दिया। क्या आपने उस रात पोप के रोम जाने से पहले, रोम से यरूशलम जाने से पहले चांद को स्याह होते देखा था? यरूशलम कदीम तरीन चर्च है। चांद चर्च की एक मिसाल है। सूरज की गैर मौजूदगी में ये हमेशा सूरज की रोशनी की अकासी करता है और ये स्याह हो गया था। मैंने इसका खाका यहाँ 3 या 4 साल पहले एक ब्लैक बोर्ड पर बनाया था और मुल्क भर में सैकड़ों और हजारों घरों में और कलीसियाओं में ये दिखाया गया था। ये क्या था? एक साया था। पहली बार कोई पोप रवाना हुआ और वापस यहाँ पर आया, जिसका नाम पोल था और वगैरह वगैरह। इन जगहों से गुजरा, दरिया को पार करने के लिए उसे बरकत दी और वगैरह वगैरह। क्या दरिया को बरकत की जरूरत थी? इस कलीसिया जमाने के साथ क्या मसला है जिसमें हम आज जी रहे हैं? क्या आप इसे देख नहीं सकते हैं? खुदा इसका ऐलान आसमान पर कर रहा है, अपने कलाम में इसका ऐलान कर रहा है, अखबार में इसका ऐलान कर रहा है, लोगों के दरमियान इसका ऐलान कर रहा है। क्या आप अपनी आंखें खोलकर इस घड़ी को नहीं देख सकते हैं? ये वो निशान है जो सच्चाई की गवाही देते हैं। यही इस घड़ी की रोशनी है। इस बड़ी आलमगीर तहरीक को देखें जो अब इस बड़ी कौंसिल में दाखिल हो रही है और बस एक ऐवान की सूरत बना रही है। मुकाशवा 17 के मुताबिक बिल्कुल वही हुआ है जो उसने कहा था होगा। क्या आप पेंटिकोस्टल लोग इसके लिए खामोश बैठे रहेंगे और इसमें शामिल हो जाएंगे? मजबूरी की घड़ी आ गई है, अब वक्त आ गया है कि उठें और अपने चराग को तराशें और यीशु मसीह की खुशखबरी और ताकत से चमकें। मुझे मालूम है ये मकबूल बात नहीं है, जबकि मेरे बहुत से पेंटिकोस्टल दोस्त पोप और बाकियों के साथ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं एक बहुत ही रूहानी एहसास हो रहा है। मेरे नजदीक ये गलत बात है, ये बाइबल के खिलाफ है, खुदा के कलाम को सच्चा ठहरना है। जी हाँ जनाब, अब वक्त आ गया है, हम इन अजीम पेश रफ्तों को देख रहे हैं। हो कुदरती निगाह को ये अच्छा लगता है, यकीन काइफा को वो सब कुछ अच्छा लग रहा था जो वो काहिनों पर जाहिर कर रहा था उस दिन बाकी दिनों के बारे में, लेकिन यीशु वो नूर था जो कलाम को जिंदा कर रहा था, लेकिन उनकी कौंसिल और बाकी लोगों ने उसके बारे में उनकी आंखें अंधी कर दी थी। उसने कहा इन्हें छोड़ दो, अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो वो सब गड़े में गिर जाएंगे। भाई और बहनों, हम दोबारा उस वक्त पर वापस आ गए हैं, हम दोबारा उस घड़ी में वापस आ गए हैं। गौर करें, क्यों? एक ही वजह है, हम जानते हैं कि वो अजीम रोशनियां थी जिनमें हम गुजरे दिनों में रहते थे, वो बिल्कुल ठीक थी। हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है, लेकिन इस लौदीकिया के कलीसिया दौर में होशियार रहें। याद रखें, ये दौर मसीह को रद्द करने वाला है और अब बिल्कुल ऐसा ही है। इस बड़ी कौंसिल ने तमाम प्रोटेस्टेंट लोगों को मुतहद करने के लिए ये आलमगीर कदम उठाया है और ये क्या कर रही है? ये खुद कलाम को खराब कर रही है और कलाम मसीह है। वो ये कैसे कर सकते हैं जबकि क्रिश्चियन साइंस वाले और यूनाइटेड ब्रदरन और इनमें से बहुत सारे लोग दूसरी बड़ी तंजीमों में हैं, कुछ कंवारी की पैदाइश पर यकीन रखते हैं और कुछ नहीं रखते, कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ वो। आप बेएतकादी के साथ कैसे शामिल हो सकते हैं? दो कैसे एक साथ चल सकते हैं जब तक वो मुतफिक ना हो? उनके दरमियान से बाहर निकल आओ और अलग हो जाओ और खुदा के मुकद्दस कलाम को ले लो और उस पर कायम रहो। यीशु मसीह अपने कलाम को जाहिर करने का पाबंद है। आज हमें जिस चीज की जरूरत है वो मलाकी 4 का वादा है, एक और नबी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उठ खड़ा होगा और बिल्कुल वही जाहिर करेगा जिसका उसने वादा किया था। तब इंसान आंखें बंद कर लेगा और उसे छोड़ देगा और सीधा अंधेरे में चला जाएगा जैसे ये हमेशा से करता आया है। अब देखें, हम जानते हैं वही सबब है, आज भी वो इसे रद्द कर रही है। कलीसिया पैगाम को रद्द कर रही है, कलाम को सलीब पर चढ़ा रही है, कलाम को बाहर निकाल रही है। अब अगर आप उससे वाबस्ता नहीं है तो आप अपना चर्च भी नहीं चला सकते हैं, वो इसे बंद कर देंगे। आपको उसमें आना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बंद कर दिया जाएगा, फिर इसका क्या होगा? तो जो हक है उसके लिए खड़े हो जाएं। याद रखें, तकरीबन एक बार फिर से मसलूब होने का वक्त आ गया है। झूठी रोशनी के वसीले दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा डाका इंग्लैंड में कुछ अरसा पहले डाला गया है। अब तक का सबसे बड़ा डाका एक झूठी रोशनी के जरिए डाला गया था। $7 मिलियन की डकैती एक जाली रोशनी के जरिए की गई जिसने ट्रेन की रफ्तार सुस्त कर दी थी और स्कॉटलैंड यार्ड्स उस आदमी को ढूंढ नहीं पाई है। वो लोग बहुत चलाकी से बच निकले थे। ये फितरी तौर पर डाकुओं की जानिब से की गई अब तक की सबसे बड़ी डकैती मानी जाती है। उसने दुनिया को अपनी सबसे बड़ी डकैती से लूट लिया और सबसे बड़ी डकैती जो यीशु मसीह की कलीसिया के साथ की गई है, झूठी रोशनी के वसीले की गई है, किसी और जमाने की चमक और इस जमाने की पेशनगोई की रोशनी को रद्द करने के वसीले की गई है। आमीन। गजिश्ता कल की चमक यानी झूठी रोशनी में ना चले, गजिश्ता कल की चमक में मत चले, आज बेटे की रोशनी में चले। अपने आप को किसी तंजीमें साए में ना खींचे ये कहते हुए कि मौजजात के दिन गुजर गए हैं। यीशु ने कहा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरुहों को निकालेंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे, उनके दरमियान ये मौजजे होंगे। वो कहते हैं रसूलों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन हमारे लिए नहीं, ये एक झूठी चमक है। यीशु ने कहा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजजे होंगे। जी हाँ जनाब, अब क्या मसला है? झूठी चमक में चल रही है, इसने सबसे बड़ी डकैती की है, इसने मसीह को कलीसिया से छीन लिया है। देखें, मसीह खुद को कल के किसी सर्द अकीदे के जरिए कैसे जाहिर कर सकता है जबकि उसका वादा उसने आज के लिए किया था। ये बीज को गर्म नहीं करता है, नहीं जनाब, ये कलीसिया का सबसे बड़ा डाका है। गर्मी और याद रखें, उस सर्द अकीदे की रोशनी आज के बीज को पका नहीं सकती है, वो बीज का इनकार करती है। वो धुंध है जो जमीन पर छाई हुई है और गहरी है। अब वक्त आ गया है कि खुदा उठे और दोबारा बत्ती जलाए और अपना कलाम जिंदा करे, जरूर चमकाए। वो सर्द अकीदा अनाज को पका नहीं पाएगा, वह सचमुच पका नहीं पाएगा। और याद रखें, तहजीब सूरज के साथ सफर करती है। जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया था, मुझे तमसीलात और फितरत के चलन का मुशाहिदा करना पड़ता है। मेरे पास ये करने के लिए तालीम नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं दुनिया की तालीम के मुकाबले में जो कुछ मेरे पास है उसे ज्यादा तरजीह दूंगा। मेरे पास यीशु मसीह है, मैं उसे अपने कलाम को सही मायनों में जिंदा करता हुआ देखता हूँ और मुझे बस इसी को जानने की जरूरत है। और अगर कोई इंसान खुदा के रूप से पैदा हुआ है तो वो आज का जवाब जानने के लिए किताबे मुकद्दस में से तलाश करेगा। आज के जमाने का जवाब मसीह है, मसीह कलाम है। जब कलाम जिंदगी में आता है तो ये वो रोशनी दिखाता है जिसका वादा आज के लिए किया गया है। इस तारीख लौदीकिया के जमाने में सिर्फ चंद है। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ मैं उन्हें मलामत और तंबीह करता हूँ, तौबा करो, यीशु ने कहा, और वापस लौटा कलाम की तरफ रुजू करो। वो कलाम है, उसकी तरफ आओ। जी हाँ जनाब, रोशनी को देखें, ये मशरिक से आई है और मगरिब की तरफ जा रही है। हम मगरबी साहिल पर हैं। इसके तीन मराहिल थे, क्या नहीं थे? इसके तीन मराहिल थे। इसने पानी को तीन बार पार किया, पालूस से बहरे रोम के पार जर्मनी में दाखिल हुई। जर्मनी लूथर की रोशनी से मुनव्वर हो गया। इंग्लिश चैनल पार किया, रियासत मुतहदा अमेरिका पहुंचे और अब इंग्लैंड की तरफ से, फिर इंग्लैंड से बहरुल काहिर को अबूर करके रियासत मुतहदा अमेरिका में पहुंची और इसने लूथर के पैगाम के जरिए अपना काम किया। आगे बढ़ते हुए बहरहाल इसका आखिरी हिस्सा दोबारा वेस्ट कोस्ट पर पहुंच गया है और अनाज के पकने से लूथर के जमाने से लेकर आज तक के पूरे जमाने में अब ये अंजील की पूरी मामूरी है। पकने के लिए खुदा की ताकत है, वो रोशनी जो रास्तबाजी तकदीस पेंटिकोस्टल दौर के जरिए दिखाई गई है। खुदावन यीशु मसीह की आमद के लिए शजरे दुल्हन को पकाने के लिए है, ताकि मसीह अपनी कलीसिया में जाहिर हो सके एक शख्स के तौर पर, वो और उसकी बीवी, वो और उसकी दुल्हन के तौर पर। आमीन। ये वो घड़ी है जिसमें हम जी रहे हैं, ये दिन की रोशनी है। इसी में चले और जमीन के तमाम किनारे बच जाएंगे। आज कलीसिया की चमक बहुत ज्यादा फरेब देने वाली है। यीशु ने मत्ती 24 में कहा है, उसने कहा, अगर मुमकिन हुआ तो ये बरगजीदों को भी गुमराह कर देगी। देखें, लूथर कबूल नहीं कर सकता था। लूथर एक मेथोडिस्ट को धोखा नहीं दे सकता, एक मेथोडिस्ट पेंटिकोस्टल को धोखा नहीं दे सकता, ये बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, लेकिन दुल्हन के बारे में क्या ख्याल है? ये बात पेंटिकोस्टलों की आंखें खोल देती है। जी हाँ, देखें, आप अपने अकीदे पर अपनी सूरत की तरफ वापस चले गए हैं, मुनज्जम हो गए हैं और आदमियों का एक ग्रुप आपको बता रहा है कि क्या करना है। बाइबल इन चीजों का वादा करती है। हमें ऐसे मर्दों और औरतों की जरूरत है जो खुदा की रूह से मामूर हों। अगर आप कहते हैं आप में खुदा का रूह मौजूद है, तो खुदा ने यहाँ एक खास वादा किया है। रूह कुद्दस उसे कैसे रद्द कर सकता है? कहे, ठीक है, ये किसी और जमाने के लिए ठीक हो सकता है। हम इस तरह ईमान नहीं रखते हैं, ये पाकरू नहीं है। वो आदमी जो खुदा से भरा हुआ है, वो और कलाम एक है। यकीनी तौर पर ऐसा ही है, ये एक इतिहाद की पैदावार है। खुदा और इंसान के दरमियान इतिहाद है। एक औरत जो किसी मर्द की बीवी बनने जा रही है, वो उसके बरक्स ऐसे काम कैसे कर सकती है जो वो नहीं चाहता कि वो करे? हम दुनिया, फिरकों और तंजीमों के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं और इस वक्त की रोशनी को कैसे ठुकरा सकते हैं? भाई और बहन, ये कैसे हो सकता है? आप सबके लिए खुदाई मोहब्बत और एहतराम के साथ साथ हम ये काम कैसे कबूल कर सकते हैं? हम इसे कैसे सुन सकते हैं? ये फिर से हमारी गोद में फेंक दिया गया है। लूथरन की मजम्मत ना करें क्योंकि उन्होंने कैथलिक की मजम्मत की थी। वेस्ली की मजम्मत ना करें क्योंकि उसने लूथरन की मजम्मत की थी। देखें, वैसे ही जब आप उस काम की मजम्मत करते हैं जो आज हो रहा है और उससे मुंह फेर लेते हैं, जब आप अपने गिरजाघरों को उस बड़ी आलमी तहरीक में शामिल होते हुए देखते हैं और वगैरह वगैरह, तो आप में से हर एक हैवान की छाप की तरफ जा रहा है और आप उसे कबूल कर रहे हैं। बहुत से नेक दिल लोग आसानी से इसमें फंस जाते हैं। आप कहते हैं वो अच्छे लोग हैं, पाक लोग हैं। उन काहिनों का भी यही हाल था। अगर मुझे यीशु मसीह की पाकीज़गी या रूह के फल को लेना होता तो आप में से बहुत सारे लोग उस तरफ चले जाते। अब इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं इसके हर लफ्ज पर यकीन करता हूँ। बहुत से लोग कहेंगे, हो, मैंने जुबानों में बात की है, मुझे वो मिल गया है। ये वो नहीं है। नहीं जनाब, इनमें से बहुत से लोग कहते हैं रूह का फल यही है। क्या यही है? आए थोड़ी देर के लिए यीशु पर मुकदमा चलाते हैं। ऐ खुदा, मुझे माफ करना, आए इसे देखते हैं और मैं इसमें काहिन बनूंगा। मैं आपसे कहूँगा, ये नौजवान आदमी जो शहर में आया है और जिसे यीशु नासरी कहा जाता है, इसकी बात मत सुनना, हम रूह के फल पर यकीन रखते हैं। अब यहाँ देखें, अपने मेहरबान बुजुर्ग काहिन को देखें, ये इसका दादा, इसका परदादा, सब काहिन थे। इसने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी है। ये सेमिनरी में गया, इसने गौर किया, इसने यकीन किया, इसने वो सब कुछ किया जो इसे सिखाया गया था। ये किताबे मुकद्दस को अलिफ से ये तक जानता है, ये खुद इसे लिखता भी रहा है। फकीह खुद किताबे मुकद्दस को लिखते हैं। और यहाँ ये है, ये एक अजीम आदमी है, आप जानते हैं ये है। क्या हुआ था जब आपकी माँ आपको जन्म दे रही थी, आपके पलंग के पास कौन खड़ा हुआ था? वो नेक बुजुर्ग काहिन। जब माँ और बाप अलग होने जा रहे थे तो दोनों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें खुदा की तरफ वापस कौन लाया था? नेक बुजुर्ग काहिन। जी हाँ। और यहाँ यहोवा ने गुनाह के लिए एक बर्रा कुर्बान करने की मांग रखी हुई है। यहाँ शहरों में ताजर लोग रहते हैं और वो अपना सामान बेचते हैं और वगैरह वगैरह, वो अपनी मसनूआत और पैदावार और बाकी चीजें बेचते हैं। वो भेड़ के बच्चे नहीं पालते हैं। और काहिनों ने क्या किया हुआ था, उन्होंने वहाँ एक छोटा सा बाड़ा बनाया हुआ था ताकि वो भेड़ों को फरोख्त कर सके, ताकि ये आदमी अंदर जाकर यहोवा के सामने अपनी जान का कफारा दे सके। उस आदमी यीशु नासरी ने क्या किया है? वो किस कलीसिया से आया है? वो किस फिरके से ताल्लुक रखता है? उसके पास कौन सा फेलोशिप कार्ड है? हम उसे बाहर निकाल देंगे, हम उससे कोई वास्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि वो हम में से हर एक को मजम्मत करता है। उसने क्या किया? वो वहाँ गया और उसे पकड़ लिया जहाँ लोग अपनी रूह बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आज हम चर्च होते हुए कहते हैं, रूहानी सोच रखने वाले कहते हैं, उसने उनकी मेज उलट दी, मनी चेंजर की मेज उलट दी, रस्सियों को एक साथ घूम कर कूड़ा बना लिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। और आपके उस खुदा तरस बुजुर्ग काहिन को शैतान का बेटा कहा, वो नेक दिल बुजुर्ग आदमी जिसने आपको मुश्किल वक्त में पैसे आधार दिए थे। कौन आपके साथ खड़ा होगा और आपके मरने पर आपको कौन दफन करेगा? वो नेक बुजुर्ग काहिन। इस शख्स में तो रूह का फल मौजूद है, लेकिन क्या यीशु नासरी में भी रूह का फल है? आप जुबानों में बात करने से फैसला नहीं कर सकते, ना ही आप रूह के फल से फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये खुदा के कलाम का इजहार है जो नूर में जाहिर हुआ है। ये नूर ही है और वही ये काम करता है। वो आदमी जो इस नूर में चलता है, यीशु मसीह जुबान में बोलने पर इंसार नहीं करता था, अगरचि उसने ऐसा किया था, वो रूह का फल नहीं था, हालांकि उसने ऐसा किया था। आप इसका फैसला इससे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसने यकीन किया और उसे सच कर दिखाया, और खुदा ने उसके जरिए उस दिन के वादे का हर लफ्ज पूरा किया। ये वक्त की रोशनी है, ये सबूत है। जब कोई आदमी मुझसे कहता है कि उन पर रूहुल कुद्दस का नजूल हुआ है और फिर भी वो खुदा के कलाम का इनकार करता है, तो उसके साथ कोई गड़बड़ है। हमारी सेमिनरियों और बाकी चीजों के साथ कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो आज के इंसान को ब्रेन वॉश थियोलॉजी और बाकी बातें सिखाते हैं। वो लोग खुदा के कलाम के खिलाफ ऐसा ही करते हैं और इन्हें वहाँ उस आलमगीर कत्ले आम में ले जा रहे हैं। देखें, सचमुच ये गलत है। मैं ये खुदावन के नाम में कहता हूँ, तुम देखो और गवाही दो कि ये सच है। ये नूर है, इस घड़ी का नूर है। ये सर्द अकीदे कभी फसल नहीं उगा सकते हैं। हमें एक ऐसी कलीसिया चाहिए जो बरे के खून से धुली हो, कलाम के साथ यकजा हो और कलीसिया हो। आज कलीसिया की झूठी चमक है, यीशु ने कहा है, बहुत ज्यादा धोखा है। अगर मुमकिन होता तो बरगजीदा भी तकरीबन सिर्फ बरगजीदा के लिए है, लेकिन जैसे नूह के दिनों में हुआ था जबकि आठ जाने बचाई गई थी, इब्ने आदम की आमद के वक्त भी ऐसा ही होगा। बहुत बहुत कम उस वक्त भी बचाए जाएंगे। ये क्या करता है? ये सीधा जबा खाने की तरफ ले जाता है। हमें मालूम है हम इस वक्त की तारीकी में जी रहे हैं। मैं ये कहकर खत्म कर रहा हूँ, हम इस वक्त की तारीकी में जी रहे हैं। यही वो दिन है जिनमें हम अब जिंदगी गुजार रहे हैं। जब नूर आसमान पर जाहिर होता है तो वो हमें दिखाने के लिए पहले हमारे दरमियान जाहिर होता है। बाइबल ने सात मोहरों के जरिए दिखाया कि क्या हो रहा था, और खुदा ने आसमान में इसका ऐलान किया कि ये दुरुस्त है। फिर नीचे आकर जमीन पर भी इसका ऐलान किया, और चर्चिज ठीक इसी तरह चल रहे हैं। फिर उस छोटी सी कलाम से जीने वाली दुल्हन को कौन बचाएगा? जब उसे अकेले सर्दी में बाहर निकाल दिया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? वो ठंडी नहीं पड़ेगी, वो आज के मौजूदा तस्दीक शुदा कलाम को थाम लेगी। ओ जी हाँ, ये इसी तरह है। ये हैरान कन बात है, मैं जानता हूँ। लोग चर्च को देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, ये तकरीबन एक ही बात है। यीशु ने कहा था कि ऐसा ही होगा, अगर ये मुमकिन होता तो ये बात बरगजीदा लोगों को भी धोखा दे देते। ओ जी हाँ, जी हाँ जनाब, ये बात मुझे हाल ही में फ्लोरिडा के एक आदमी की याद दिला रही है। वो बात कर रहा था, कहा कि उसके पास एक शेवरलेट कार थी जो फ्लोरिडा में खराब हो गई थी, और कहा कि वो उसे गैराज में ले गया और एक मैकेनिक उसे ठीक कर रहा था। उसने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन उसे स्टार्ट ना कर सका। वो उसके साथ जो कुछ भी कर सकता था सब कुछ कर लिया। उसने उन तमाम मुख्तलिफ चीजों की तजदीद की और वगैरह वगैरह, लेकिन उनसे भी काम ना बना और वो उसे स्टार्ट ना कर सका। वो बस बार बार कोशिश करता रहा। छोटा मैकेनिक परेशान हो गया, इधर उधर भागने लगा, पूरी इमारत में शोर करने लगा और खड़े हुए आदमी ने कहा, जनाब मैं अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, क्या आप ठीक नहीं कर सकते? उसने कहा, मैं वो सब कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा परेशान था और उसके साथ चलने लगा। अचानक से एक उम्दा लबास में मलबूस एक साहिब आए और चंद लम्हे उसकी तरफ देखा और मैकेनिक से कहा। उसने थोड़ी देर उसे सर हिलाने दिया और उसने कहा, आप इस चीज को क्यों नहीं छू रहे, आपको करंट नहीं मिल रहा है? बस उसने कहा, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। बस उसने उस दूसरी छोटी सी चीज को घुमाया, वो जो भी चीज थी, और उसने करंट पकड़ लिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो मुड़ा और कहा, आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं? वो कौन था? वो जनरल मोटर का चीफ इंजीनियर था। उसने वो चीज बनाई थी, उसने उसे डिजाइन किया था। इस घड़ी भाई, हम सोच रहे हैं कि हमारी बेदारी के साथ क्या खराबी है, क्या गड़बड़ है। हमें मवाद और बाकी सब कुछ मिल गया है, हमें मैकेनिक्स मिल गया है, लेकिन डायनामिक्स कहाँ है? हमें बस एक काम करना है कि यीशु मसीह को मंजरे आम पर ले आए। क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ, आज यहाँ एक है, हालेलुया, जिसे पाखरू कहा जाता है, जो डायनामिक्स को छू सकता है, वो मैकेनिक्स का डायनामिक्स है। हम आज बतौर पेंटिकोस्टल मुल्क के सबसे बड़े गिरजाघरों में खड़े हुए हैं। हर साल हजारों हजारों की तादाद में शामिल हो रही है, लेकिन वो रूल कुदस कहाँ है? हम इसे गैर जुबानों में बोलने के वसीले कबूल करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे अमल करता है। मेथोडिस्ट इसे शोर मचाने के वसीले कबूल करते हैं, लूथर और बाकी लोग इसे ईमान से कबूल करते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। ये कलाम है, ये कलाम है जो रोशन हुआ है। रोशनी मैकेनिक्स को रोशन करती है और वो डायनामिक्स बन जाते हैं। वो डायनामिक्स है। जब डायनामिक मैकेनिक के पास आता है, इससे चीजें घूमना शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। बस कलाम को ले लें, अगर इसमें एक भी चीज कम है तो ये कभी स्टार्ट नहीं होगा। हर एक बोझ, हर एक इज्जत, हर एक अकीदे को एक तरफ कर दें, ताकि डायनामिक्स जो कि पाक रूह है, कलाम के जरिए बहकर इस कलाम की तस्दीक करे, जिसका इस दिन के लिए वादा किया गया है। फिर खुदा का अजीम चर्च एक जेट तैयारे की तरह अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा, अपने आका से मिलने के लिए आसमानों की तरफ प्रवास करेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेगा। बस यही वो चीज है। जी हाँ जनाब, ये काम कौन करेगा? इसे उस दिन कौन बचाएगा जिसके बारे में हम सोच रहे हैं? याद रखें भाई। अब ये बात मुझे एक और छोटी सी कहानी याद दिला रही है। कहानियों पर वापस नहीं जा रहा, लेकिन मेरा एक दोस्त कार्ल्सबैड न्यू मैक्सिको में खड़ा हुआ था, जब हम कार्ल्सबैड में एक मीटिंग कर रहे थे और लोगों का एक ग्रुप उस गार में उतर गया। हो, मुझे ऐसी चीजें कभी पसंद नहीं आती। वहाँ नीचे गहराई थी और जमीन में तकरीबन एक मील नीचे थी। मैं यहाँ ऊपर मुतमिन हूँ, चुनाचे वो नीचे चले गए। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, नीचे नहीं। इसलिए मैं, उन्होंने एक आदमी को लिया और नीचे चले गए, और वो एक आदमी का दोस्त था और उसकी छोटी बेटी और छोटा बेटा उनके साथ नीचे चला गया, और वो नीचे एक बड़े तहखाने में चले गए। ओ, मेरा ख्याल है कि जमीन की सतह से सैकड़ों और सैकड़ों और सैकड़ों फीट नीचे चले गए, और वो आदमी जो वहाँ स्विच के पास खड़ा हुआ था, एक दम से उसने बत्ती बंद कर दी, और वो इतना स्याह और घना अंधेरा था, यहाँ तक कि आप अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने करके भी नहीं देख सकते थे। और वो छोटी लड़की, वो नन्ही बच्ची बहुत ज्यादा खौफज़दा हो गई। उसने अपनी पूरी आवाज के साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, वो पुर असरार तरीके से चिल्ला रही थी। उसका छोटा भाई उसके साथ ही खड़ा था। वो उस अंधेरे में चिल्ला उठा और कहा, छोटी बहन डरो मत, यहाँ एक आदमी है जो बत्ती जला सकता है। हालेलुया, छोटी कलीसिया क्या करेगी? डरो मत, आज यहाँ एक आदमी है जो बत्ती जला सकता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। ओ जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह है। याद रखें, यीशु की पैदाइश के दिनों में अंधे, वो अमीर आदमी, जब वो वहाँ पहुँचे और उसके बारे में पूछ रहे थे, तो यरूशलम की चमक ने उन्हें ना तो हैरान किया और ना ही अंधा किया। उनकी थियोलॉजी उनको ये बात समझा ना पाई, लेकिन जब उन्होंने रुख मोड़ा तो वो अबदी जिंदगी की रोशनी की तरफ चले गए। आप आज बिजनेसमैन तंजीमों की चमक दमक पर तवज्जो ना दें, बल्कि कलाम को थाम लें, ये आपकी रहनुमाई रोशनी तक करेगा। छोटी बहन मत डरो, यहाँ एक आदमी है जो बत्ती जला सकता है, यहाँ एक मसीह है जो अपने कलाम को बिल्कुल वैसे ही जिंदा कर सकता है जैसे उस वक्त किया था, जो खुद की तस्दीक करता है कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? आएं, हम खड़े हो जाएं। मुझे अगली मीटिंग में जाने के लिए वक्त से पहले 15 मिनट मिल गए हैं। क्या आप अपने हाथों को बुलंद करके ये कहेंगे, ऐ खुदा उस बत्ती को आज सुबह मेरे अंदर जला दे। मैं कलाम पर ईमान रखता हूँ, मैं मैकेनिक्स पर ईमान रखता हूँ। खुदावन मुझ में डायनामिक्स अंडेल दे। अपने हाथों को बुलंद करके उससे फरियाद करें, खुदावन बत्ती जला दे। यहाँ एक आदमी है जो बत्तियाँ जला सकता है। हम कम्युनिज्म में मुर्दा हैं और तंजीमों के हर किस्म के कीड़ों ने हमें खा लिया है, लेकिन यहाँ एक आदमी है जो बत्तियाँ जला सकता है। वो आदमी खुद रूहुल कुदस है। यीशु मसीह रूह के वसीले जाहिर हुआ है। खुदावन यीशु इनमें से हर एक हाथ को छू ले, सिर्फ हाथों ही को नहीं बल्कि बाजुओं से होते हुए दिल को भी छू ले और अंजील की बत्ती जला दे यीशु के नाम में।